मेरे अपने प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 9 फरवरी 2018 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान दोस्तों के नाम हैं प्रदीप कुमार चौधरी, आप डांग गुजरात से हैं, संग्राम सिंह फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं, शशि कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, पूजा त्रिवेदी बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, अनीता द्विवेदी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, और दीपक चौहान आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। तो प्रदीप कुमार, संग्राम, शशि, पूजा, अनीता और दीपक, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज 9 तारीख है, सैटरडे को कल 10 तारीख होगी और संडे को 11 तारीख। 11 तारीख को मैं आपसे सीधे बातचीत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस दिन रविवार होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात हो गई, सर इसे क्यों दोहरा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि इस 11 तारीख के बाद जो अगली 11 तारीख आएगी यानी कि 11 मार्च, मित्रों वह दिन होगा जब आप सब वे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए, वे सब मेरे सामने होंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि मैं भी उनके सामने होऊंगा, यानी कि हम आमने सामने होंगे। अभी तो हम दोनों के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट है ना, चाहे वो आपके स्मार्टफोन के रूप में हो या लैपटॉप के रूप में हो, हम केवल एक दूसरे की क्या, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपकी आवाज को मैं आपके ईमेल के जरिए सुनने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज देख रहा हूं, आपकी आवाज को पढ़ रहा हूं। 11 मार्च का दिन वह दिन होगा जब हम आमने सामने होंगे एक दूसरे के, और ढेर सारी बातों की शुरुआत होगी। तो इसीलिए मित्रों, चूंकि मैं उस दिन आप सबका वेलकम नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ठीक एक महीने पहले 11 फरवरी को मैं आप सबका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बिहाफ पर 2 दिन पहले ही सही, आज 9 फरवरी को मैं अपने उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो यहां भोपाल आने की अब लगभग मानसिकता बना चुके हैं और मानसिक रूप से वो अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। और मित्रों, नेक्स्ट वीक से अब मैं आप लोगों के लिए भी कुछ बातें बीच बीच में किया करूंगा कि क्लास में यहां आने से पहले आपको किस तरीके से अपनी तैयारियां करनी चाहिए ताकि यहां आने के बाद आप इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वे विद्यार्थी जो यहां क्लास में आने वाले हैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से, एक महीने पूर्व हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब कुछ सूचनाएं हैं जो मैं लगभग हर शुक्रवार को देता हूं। सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पढ़ने को मिलेंगी, साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के 2-2 आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। 2 इंग्लिश के होंगे टोटल और 2 इंग्लिश हिंदी के होंगे। आपको एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है जो मेन्स एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें क्योंकि अंततः आंसर राइटिंग ही आपको सिविल सर्वेंट बनाएगा। इसके बाद जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों, इस सूचना के बाद अब आज हम जिस मुख्य विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे, जिसे हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं। लेकिन इससे पहले जो कुछ दूसरी खबरें हैं मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, कल की रेडियो न्यूज में आपने एक सेंटेंस सुना। देखिए, सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कैसे पकड़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, सभी टॉपिक पर हम बराबर तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। संभव नहीं है तो छोड़िए, मुझे लगता है कि वो जरूरी भी नहीं है, अनावश्यक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए सेलेक्ट करते हैं और उन पर हम अच्छी तैयारी करते हैं। बाकी जो टॉपिक होते हैं उनमें हमारी तैयारी सामान्य स्तर की होती है, और ढेर सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये तीन कैटेगरी होती है। स्वाभाविक है कि अगर 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं मेंस में, तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे होने ही चाहिए जिन पर हमारी अच्छी तैयारी है। 50% तो मान करके चले कि जिन पर हमारी अच्छी तैयारी है। अब अच्छी तैयारी हो तब जब हम सही में अच्छे टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकें। तो अच्छे टॉपिक्स मतलब क्या होता है उसका, उसे सेलेक्ट करेंगे कैसे? तो मैं आपको एक उदाहरण जो कल की न्यूज में थी उसके आधार पर बता रहा हूं। कल के न्यूज में आपने देखा कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया सचिव ने, कि इस बार का बजट का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाना है। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली में बदलाव लाना इस बार के बजट का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या आपको नहीं लगता मित्रों कि यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार बजट से कोई प्रश्न बना पूछा गया तो शायद वो यही होगा। वैसे भी आप शुरू से देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए बजट में ये किया गया है, किसानों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है बाद के न्यूज में। तो किसान भी गांव का ही हिस्सा है, गांव के ही हिस्से हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हम अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं जो आपका मेन्स एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। ठीक इसी प्रकार कल के अगर आपने ऑडियो लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो मैंने मालदीव की बात कही थी। कल मालदीव के संकट पर मैंने थोड़ी सी बात की थी आप सबसे। तो मालदीव का भी जो टॉपिक है वो इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर, अभी जो भी एग्जाम जब भी होगा, मतलब आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से मित्रों, जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है वो इनफैक्ट एक सिस्टम के तहत की जानी चाहिए, एक साइंस के तहत ही की जानी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ भी सामने आया उसे हमने इंपॉर्टेंट मान लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, चीजें जुटानी शुरू कर दी, उससे बात बनती नहीं है। तो मित्रों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नोट कर लेना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, आप देखिए, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं जो ऑलरेडी न्यूज में था, वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की यात्रा पर जा रहे हैं, राइट? उसमें ओमान की यात्रा पर भी जा रहे हैं, दूसरे देशों की भी यात्रा है, 2-3 देशों की यात्रा, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है ये हमें समझना होगा। ओमान तो खैर मुझे जाने का मौका मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट फिलिस्तीन की यात्रा। फिलिस्तीन की यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसराइल की यात्रा हो चुकी है, ये इसराइल के राष्ट्रपति भारत आए हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसराइल, भारत और फिलिस्तीनी के जो अभी संबंध हैं उनमें थोड़ी सी जटिलता पैदा हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हुए जो फिलिस्तीनी की यात्रा पर जा रहे हैं, पहले ही हुए जो इसराइल की यात्रा पर जा रहे हैं, और जटिलता जो इन संबंधों में आ गई है उसका मूल कारण कह लीजिए कि अभी जब अमेरिका ने जो आपका इसराइल है उसकी राजधानी के लिए यरूशलम को डिक्लेयर कर दिया, अभी तक उसकी राजधानी तेल अवीव थी, इतनी तो जानकारी आपको डेफिनेटली होगी अगर आप थोड़े से भी ध्यान से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उसके ऊपर वोटिंग हुई यूएनओ में तो भारत ने उसके खिलाफ वोटिंग किया, यानी कि वो इसराइल के पक्ष में नहीं था, आपको ध्यान होगा। उस समय यह बात उठी तो इसका मतलब है कि इसराइल और भारत के संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि वहां भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद यात्रा हुई और वो संबंध आप देखिए कि भारत और इसराइल के संबंध बड़े घनिष्ठ रहे, यानी कि भारत ने वहां जो स्टैंड लिया उसका कोई विपरीत प्रभाव भारत और इसराइल के संबंधों के बीच में नहीं पड़ा। और भारत और इसराइल के संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमको एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन, सिक्योरिटी और वेपन्स, युद्ध के मामले में हथियार, इन सब चीजों की सप्लाई इसराइल से चाहिए, हमें वहां से टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमारे लिए इसराइल के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना देना एक तरीके से फायदे का सौदा नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ ही चुनौती थी कि हम फिलिस्तीनी के साथ कैसे अपने उस संतुलन को बनाए रखें, इसके कारण ये जटिलता आई थी। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस जटिलता पर होना चाहिए। अब देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जाने के बाद वहां क्या बातें होती हैं, किस तरीके से चीजें सामने आती हैं, अब वो डिपेंड करेगा। लेकिन खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर के फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और लग रहा है कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा भी अद्भुत रूप से सफल होगी। तो मित्रों, ये एक दूसरा कह लीजिए कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहला मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी की फिलिस्तीन यात्रा। यात्रा होने के बाद हो सका तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन यदि बात नहीं भी हो सकी मान लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक में शामिल कर लें और बकायदे इस पर पॉइंट्स नोट करते जाए। मालदीव की समस्या के बारे में मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी बता चुका हूं, और कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं थी। आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, कल मैंने जब शेयर मार्केट के बारे में बात की थी तो थोड़ा मैंने बताया था कि विश्व का जो बाजार है, शेयर बाजार, वो क्यों गिर रहा है, तो उसमें मैंने बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल किया था। कल मुझे बहुत से मेल मिले जिसमें स्टूडेंट ने सीधे सीधे पूछा कि सर बॉन्ड क्या है। मैं समझ सकता हूं कि यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया हुआ है, या आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं सामान्य ज्ञान के तहत ही, तो फिर बॉन्ड का ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ी संख्या उन स्टूडेंट्स की होती है जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मूलभूत बात है, तो मुझे आज के टॉपिक में इसी को क्लियर करना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए, जो बॉन्ड है बेसिकली आप ये कह लीजिए कि लोन का एक इंस्ट्रूमेंट है। लोन का इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि जैसे अगर मुझे उद्योग लगाना है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्लास स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने उन्हें बहुत विस्तार के साथ समझाया था, याद करने की कोशिश कीजिए कि जब कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उस इंडस्ट्री के लगाने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और फिर जो धन की व्यवस्था होती है वो कहां कहां से होती है, और उसके आधार पर मैंने पूरे औद्योगिक जगत को समझाने की कोशिश की थी। तो बॉन्ड बेसिकली एक धन इकट्ठा करने का या धन प्राप्ति का एक साधन है। मैंने यहां कहा कि लोन का इंस्ट्रूमेंट है, बट नेचुरली कि आपको कोई सीधे पैसा नहीं देगा, उसके बदले में आपको जो जिसने पैसा दिया है उसको कुछ ना कुछ तो ब्याज देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फायदा देना पड़ेगा, तभी वो अपना पैसा आपको देने का जोखिम मोल लेगा, अदरवाइज वो क्यों लेगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम बॉन्ड के जरिए धन लेते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रतिभूति। जो बॉन्ड है, याद रखिए, वो सरकारी भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड निकालती है, सरकार भी बॉन्ड निकालती है। आपने कभी एक शब्द सुना होगा, वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल तो खास अक्सर जो सरकारी बॉन्ड होते हैं उनको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार को सड़क बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, उसने फैसला किया कि ये 50,000 करोड़ रुपए हम बॉन्ड के जरिए लेंगे, तो क्या है, वो बॉन्ड निकालेगी। मान लीजिए 1,000 रुपए के बॉन्ड निकाल लिए, 5,000 रुपए के बॉन्ड निकाल लिए, इस उदाहरण से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और वो कहेगी कि सरकार कहेगी कि भाई आप लोग इस बॉन्ड को खरीदें, और उसका एक पीरियड होगा 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, मान लीजिए चलिए इसमें कि 10 साल के लिए जो बॉन्ड है ये 10 साल के लिए आपको खरीदना होगा, और 10 साल के बाद सरकार को आप ये बॉन्ड लौटा दीजिए, और सरकार उसके बदले में आपको पैसा वापस देगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो 10 साल के बाद सरकार कहेगी कि हम आपको 3,000 रुपए वापस देंगे। तो यानी कि आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और 10 साल के बाद आपको 3,000 रुपए उसके बदले में वापस मिल गए, तो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सरकार को 50,000 करोड़ रुपए उस समय तुरंत मिल गए, और सरकार को अब इसके ब्याज का तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, तो उसका भी क्या काम चल गया, और जो मैं आप जो बॉन्ड खरीदेंगे उन्होंने अपना धन इन्वेस्ट कर दिया, तो हम इन्वेस्टर कहलाए। तो ये जो प्रॉफिट मिला, एक और शब्द आप अक्सर सुनने को आपको मिलेगा, वो है इल्ड। इल्ड खेती में भी होता है ना, इल्ड पैदावार जिसको हम कहते हैं। तो इल्ड शब्द अगर आपको कहीं भी पढ़ने को मिलता है तो वो है बेसिकली बॉन्ड पर मिलने वाला प्रॉफिट, कि जब आप बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं इल्ड। तो ये कुछ शब्द हैं मित्रों, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज कभी कभी होता यह है कि छोटी चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में फिर इससे जुड़े हुए जो दूसरे तथ्य होते हैं वो हमसे मिस होने लगते हैं। अब आप देखिए कि जो ज्यादातर लोग जो पैसा लगाते हैं, या थोड़ा सा अब इसे वर्तमान संदर्भ में समझ लीजिए, तो शेयर मार्केट में तीन जगहों पर लगाते हैं। सच पूछे तो या तो मेरे पास जो पैसा है वो मैं बैंक में जमा कर दूंगा, ठीक है, बैंक मुझे ब्याज देती रहेगी। जो बैंक मुझे ब्याज दे रही है तो देखिए वो बिल्कुल फिक्स जैसा है ना, बिल्कुल फिक्स है, उसका रेट फिक्स है। बैंक मुझे एक साल में कितने परसेंट ब्याज देगी, 6%, 7%, 8%, तो मैं बैंक में पैसा जमा करके निश्चिंत हो जाऊंगा, खत्म हो गई बात। और जब भी मुझे जरूरत होगी तब मैं निकाल लिया करूंगा। अगर वो फिक्स डिपॉजिट में है तो समय होगा, नहीं तो फिर जब जब जरूरत पड़ेगी मैं निकालता रहूंगा। बॉन्ड जो है उसमें फर्क ये है कि उसमें सामान्यतया आप बहुत ज्यादा पैसा निकाल नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे 10 साल के लिए आपको बॉन्ड आपने खरीदा है तो 10 साल से पहले आप उस पैसे उस बॉन्ड को बेच नहीं सकते, उससे पहले भी बेच सकते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा सा डिस्काउंट होता है, उसका पैसा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है, लेकिन जो आपने बैंक में जो पैसा जमा कर दिया है तो आप देखते हैं कि उसमें तो कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में जब मैं पैसा लगाता हूं तो शेयर मार्केट में याद रखिए कि एक जोखिम बना रहता है। हो सकता है कि मैंने 1,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाए हैं और एक साल के बाद वो 1,000 रुपए मेरे केवल 700 रुपए रह गए हो, केवल 500 रुपए रह गए हो, क्योंकि जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे थे वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई, घाटे में चली गई, तो मेरा शेयर 1,000 रुपए का 500 रुपए रह गया। तो वहां जोखिम रहता है, हो सकता है कि वो 1,000 रुपए मेरे 2,000 रुपए भी हो सकते हैं अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो। लेकिन बॉन्ड में ऐसा कोई जोखिम नहीं होता, बॉन्ड के रेट फिक्स होते हैं कि आपको साल में इतना प्रॉफिट मिलेगा। हां, अलग अलग समय पर अलग अलग बॉन्ड निकलते हैं और उनकी उनके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो उस समय डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो मित्रों, अभी जो शेयर और बॉन्ड में जो शिफ्टिंग हो रही है वो इसीलिए शिफ्टिंग हो रही है क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि अगर वो बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो वो शेयर की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट वाला काम होगा, तो लोग शेयर मार्केट से निकाल करके पैसा अपने बॉन्ड में लगा रहे थे, तो इसकी वजह से शेयर मार्केट गिर रहा था। लेकिन अब आपको मालूम है कि थोड़ा संभल गया, आखिर गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, है ना, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू भी तो होती है कंपनी की। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ इन्वेस्टर पर ही डिपेंड करेगा, शेयर खरीदने और बेचने वालों पर ही निर्भर करेगा। तो मित्रों, ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताई है। यही बेसिक नॉलेज होती है जो आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए करनी ही चाहिए, जो बहुत ही मूलभूत चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स पर। आता क्या हूं वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, वो आप देख लीजिएगा, अपनी जरूरत के हिसाब से क्लिपिंग्स पढ़ लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, वंदन भट्ट भावनगर गुजरात से, राग मिश्रा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, उदय ओबे, पूर्णिमा दुबे, प्रदीप हिसार हरियाणा से, और मानवेंद्र सिंह झांसी उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि शुक्रवार है आज, कल शनिवार और रविवार आपके छुट्टी के दिन हैं। इन दोनों दिनों के लिए अपनी टीम की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।